Good evening, listeners, and a very warm welcome to today's edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic news of the day. And today, of course, being Sunday, we look forward to taking calls from our listeners on any queries that you may have on mutual fund and related matters. Listeners, you can connect with us on 2331-4444, 2342-1050 and 2331-0464. And of course, do prefix the code 011. Along with my co-anchor, Subodh Mishra, I am Sarabjeet Kaur.
नमस्कार श्रोताओं, कारोबारी खबरों के साथ मार्केट मंत्र हाजिर है। आज रविवार है और हर रविवार की तरह आज भी हम म्यूचुअल फंड से जुड़े आपके सवालों के जवाब देंगे। सवाल पूछने के लिए आप इन नंबरों पर फोन कर सकते हैं 2331-4444, 2342-1050 और 2331-0464। दिल्ली से बाहर के श्रोता और मोबाइल से फोन करने वाले श्रोता इससे पहले एसटीडी कोड 011 डायल करें। आज की खबरों पर चर्चा करने और श्रोताओं के सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में है म्यूचुअल फंड्स एक्सपर्ट आशुतोष गुप्ता। आशुतोष, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है।
जी, बहुत धन्यवाद।
पहले हेडलाइंस के साथ सरबजीत कौर।
यस सुबोध, राइट अवे, डोमेस्टिक मार्केट्स टू फोकस ऑन मैक्रो डेटा, ग्लोबल टैरिफ्स डेवलपमेंट एंड फॉरेन फंड इनफ्लोज फॉर क्यूज नेक्स्ट वीक। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हाइलाइट्स ट्रांसफॉर्मेटिव रोल प्लेड बाय वुमेन इन द जर्नी टुवर्ड्स अ डेवलप्ड इंडिया। एंड फॉरेन इन्वेस्टर्स पुल आउट नियरली 9,000 करोड़ रुपीज फ्रॉम द इंडियन इक्विटी मार्केट्स इन द फर्स्ट वीक ऑफ जून।
अगले सप्ताह देश के बाजारों का फोकस रहेगा आर्थिक आंकड़ों, आयात शुल्क से जुड़ी खबरों और विदेशी निवेश पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत की ओर यात्रा में महिलाओं की परिवर्तनकारी भूमिका का विशेष उल्लेख किया और विदेशी निवेशकों ने जून के पहले सप्ताह में भारत के शेयर बाजारों से लगभग 9,000 करोड़ रुपए निकाले।
After snapping 2 weeks of losing streak last week, the domestic markets will monitor some triggers like India's retail inflation, global tariff announcements, foreign capital flow, macroeconomic data and global markets for cues next week. The domestic benchmark indices gained 1% last week after RBI announced a double booster of a 50 basis points cut in repo rate and 100 basis points in CRR. Next week, markets will focus on key macroeconomic data like consumer price index, CPI inflation data and the index of industrial production, IIP. Additionally, the progress of the monsoon and sowing patterns will also be closely monitored. On the global front, developments in trade negotiations and movements in US bond yields will continue to influence investor sentiment. And Subhash, our first caller from Rajasthan, joins us. Subhash, welcome. Apna sawal poochiye.
Namaskar, Madhukumar. मार्केट मंत्रा।
नमस्कार
मैडम जी, मैं जेएम लार्ज कैप फंड ग्रोथ ऑप्शन और जेएम इक्विटी हाइब्रिड फंड ग्रोथ ऑप्शन, ये दो मैंने म्यूचुअल फंड में वन टाइम किया है 50,000 का और ये 10 महीना हो गया, लेकिन ये दोनों डाउनवर्ड साइड जा रहे हैं। आपका क्या इस पे है रिव्यू कि इसको होल्ड करूं, क्या करूं, थोड़ा सा बताएंगे?
जी देखिए, थोड़े लंबे अरसे में आप देखेंगे तो जेएम की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी रही है, काफ़ी ठीक ठाक प्रदर्शन इनके फंड्स का रहा है। पिछला एक साल उस कंपैरिजन में थोड़ा निराशाजनक ज़रूर है, तो आपको जो हाल फिलहाल में थोड़ा निराशा हुई है रिटर्न से तो वो मैं समझ सकता हूँ। लेकिन अगर आप इनका मीडियम टर्म रिटर्न देखेंगे तो इन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है और ये किसी भी अच्छे से अच्छे फंड के लिए एक अंडर परफॉर्मेंस का फेज़ उसकी लाइफ में आना ये काफ़ी स्वाभाविक है, तो आप जल्दी में कोई फैसला ना लें, थोड़ा फंड को और टाइम दें।
अगले कॉलर हैं महाराष्ट्र से अनंत। अनंत, स्वागत है आपका, सवाल पूछे।
गुड इवनिंग सर।
गुड इवनिंग।
मैं सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि मैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया हूँ, मैंने अभी तक मेरा 20 लाख का पोर्टफोलियो है, मेरा बेटा 21 साल का है, अभी उसने कंपनी ज्वाइन की, वो आईटी इंजीनियर है, तो उसके इन्वेस्टमेंट के हिसाब से म्यूचुअल फंड में वो डायरेक्ट इन्वेस्ट करे या एजेंट के थ्रू इन्वेस्ट करे, और दूसरी बात कि वो लार्ज कैप के एसआईपी ले या मीडियम और स्मॉल कैप के एसआईपी ले, इसके बारे में मैं जानना चाहता हूँ।
जी, आपका पहला सवाल डायरेक्ट में इन्वेस्ट करें या एजेंट के थ्रू करें। देखिए, जैसा आपने बताया कि आप म्यूचुअल फंड में ऑलरेडी निवेशित हैं, आपका एक अच्छा खासा पोर्टफोलियो है, आपको एक्सपीरियंस है, जानकारी है, तो मैं नहीं समझता कोई रीजन है जिसके लिए आपको डायरेक्ट में ना जाएं। डायरेक्ट में आपको क्लियर एडवांटेज है, खर्चा कम होता है, तो रिटर्न रेगुलर प्लान ऑप्शन के बदले ज्यादा होता है। तो अगर आप कॉन्फिडेंट हैं, आप खुद से इन्वेस्ट करने का कॉन्फिडेंस रखते हैं, जानकारी है आपको, किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू आप इन्वेस्ट करने में सक्षम है, तो जरूर डायरेक्ट से ही शुरुआत करिए। एजेंट के थ्रू आप तब जा सकते हैं जब आपको जानकारी का अभाव है।
जी, इन्होंने बताया कि बेटा आईटी इंजीनियर है।
हाँ, तो देखिए, ऑल द मोर रीजन, बेटा आपका आईटी इंजीनियर है तो डिजिटल इकोसिस्टम से इंटरेक्ट करने में वो काफी सक्षम होंगे जरूर। तो आप मेरी राय में डायरेक्ट से ही शुरुआत करिए। जहां तक आपने पूछा कि लार्ज कैप से शुरू करें या मिड कैप, स्मॉल कैप, देखिए मेरे हिसाब से आप फ्लेक्सी कैप या मल्टी कैप, कोई भी दो अच्छी फंड कंपनी के फ्लेक्सी कैप या मल्टी कैप फंड से शुरुआत करें। उसमें आपको एक मिक्स्ड पोर्टफोलियो मिलता है, कुछ लार्ज कैप, कुछ मिड कैप और कुछ स्मॉल कैप एलोकेशन आपको बिल्ट इन मिलता है। वैसे भी जैसा आपने बताया कि ये काफी यंग एज में आपका बेटा शुरुआत कर रहा है और ये बहुत अच्छा है, मैं आपको मुबारकबाद देना चाहूंगा कि आप एक शुरुआती एज के साथ ही ये निवेश शुरू करा रहे हैं। लॉन्ग टर्म में उनको उसका काफी भारी लाभ मिलने की उम्मीद है। तो आप फ्लेक्सी कैप या मल्टी कैप फंड का चुनाव करें।
जी, मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट लिसनर, योगेश जी दिल्ली से जुड़ चुके हैं हमारे साथ। योगेश जी, अपना सवाल पूछिए।
नमस्कार अखिल को, और आशु जी को नमस्कार। ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है एक रिटेल निवेशक के लिए कि जो आपसे सीधे सवाल पूछ पाते हैं। सर, मेरे सर ये सवाल है कि हमने हाल ही में अपना पोर्टफोलियो थोड़ा कंसोलिडेट कराया, तो उसमें जो भी हमारा लिक्विड फंड का एलोकेशन था, जो इमरजेंसी फंड था, उसको भी हमने एक ही फंड में कर दिया है, शॉर्ट आईसीआईसीआई शॉर्ट टर्म डेट फंड में ही ज्यादातर अपना फिक्स इनकम एलोकेशन डाल दिया है। तो क्या लिक्विड फंड को भी उसी में फिलहाल के लिए रखा जा सकता है आईसीआईसीआई शॉर्ट टर्म डेट फंड में? दूसरा में
जी, तो आप देखिए, आईसीआईसीआई प्रू का शॉर्ट टर्म फंड एक अच्छा फंड है अपनी कैटेगरी का, शॉर्ट ड्यूरेशन, और शॉर्ट ड्यूरेशन कैटेगरी अपने आप में बहुत ज्यादा रिस्क टेकिंग कैटेगरी नहीं है। काफी नपातुला रिस्क इसमें होता है, 1 से 3 साल तक की अवधि के बॉन्ड्स में ही ये फंड्स अधिकतर अपना पोर्टफोलियो निवेश करते हैं। ये निर्धारित है सेबी के रूल्स के हिसाब से, तो फंड मैनेजर के पास बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती पोर्टफोलियो की ओवरऑल ड्यूरेशन को कहीं और टिल्ट करने की। तो जनरली स्पीकिंग, शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स को माना जाता है कि रीजनेबली सेफ, हाई क्वालिटी पोर्टफोलियो रखने वाले फंड्स होते हैं। जो डेट फंड वैसे ही बहुत ज्यादा वॉलेटाइल नहीं होते, उनमें भी शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स कम ही वॉलेटाइल होते हैं। तो लिक्विड फंड से थोड़ा एक्स्ट्रा रिस्क होता है, लेकिन उसमें थोड़ा ज्यादा रिटर्न की भी संभावनाएं इन फंड्स में होती हैं। तो मेरे लिहाज से अगर आप शॉर्ट टर्म फंड आईसीआईसीआई प्रू में भी अपना अगर डेट एलोकेशन रखते हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है।
जी, दिल्ली से धीरज हमारे साथ है। धीरज, स्वागत है आपका, सवाल पूछे।
जी नमस्कार सर।
नमस्कार
सर, जैसे कि मैं सीनियर सिटीजन हूँ और हमने एफडी में इन्वेस्ट कर रखा है और बेटे को भी हमने एफडी में इन्वेस्ट करा रखा है, क्या हम म्यूचुअल फंड में सरल तरीके से इसको इन्वेस्ट कराना चाहें तो क्या तरीका सही रहेगा? और अगर हम एक साथ, हमें क्योंकि हम न्यू कस्टमर माने जाएंगे, तो अगर हम 5 कंपनियों में अगर हम जाते हैं तो हम कितना रुपए महीना, हम मान के चलें कि हमें इसको 500 रुपये महीना हर कंपनी में हमें डालने पड़ेंगे और लंबे टाइम के लिए मान के चलिए 5 साल तक हम अगर डालते हैं तो 500 रुपये महीने से स्टार्ट हो जाएगा, कि कैसे स्टार्ट होगा, किस कहाँ से इसकी अधिक से अधिक जानकारी मिल पाएगी?
जी देखिए, पहला सवाल आपका कि आप शुरुआत कैसे करें। देखिए, आप शुरुआती निवेशक हैं, मैं आपकी बात से जो जान पा रहा हूँ कि शायद आपको बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है अभी म्यूचुअल फंड्स की, किस तरह निवेश करें, क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं। तो आप अपने बैंक की शाखा के थ्रू भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। देखिए, जैसे अभी एक पिछले श्रोता से हम बात कर रहे थे कि अगर आप डिजिटली इन्वेस्ट करने में सक्षम है, आप ऑनलाइन चीजों को समझ कर एक डू इट योरसेल्फ इन्वेस्टर की तरह अगर इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स आज की डेट में उपलब्ध हैं। म्यूचुअल फंड कंपनीज की वेबसाइट से भी आप डायरेक्टली निवेश कर सकते हैं, लेकिन अगर वो शुरुआत में करना आपके लिए थोड़ा अनकंफर्टेबल है जानकारी के अभाव में, तो आप किसी एजेंट के थ्रू, किसी म्यूचुअल फंड एजेंट के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप अपने बैंक के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं तो ध्यान रखिए कि आप म्यूचुअल फंड कहकर आपको यूलिप ना दे दी जाए, तो आप किसी एजेंट के थ्रू शुरुआत करिए। और शुरुआती अमाउंट आपने बिल्कुल ठीक कहा, आप छोटे अमाउंट से निवेश अपना शुरू करिए, जिससे आपको जानकारी से बढ़ेगी, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और उसके बाद आप ज्यादा अमाउंट पे इन्वेस्ट करिए। आजकल काफी फंड हैं जो 100 रुपये मासिक SIP भी एक्सेप्ट करते हैं, तो आप 100 रुपये से भी शुरुआत कर सकते हैं, 500 रुपये से तो अधिकतर फंड्स में शुरुआत कर सकते हैं। तो आप जरूर 4 से 5 फंड में 500 रुपये का अगर आप निवेश से शुरुआत करना चाहते हैं आप वो करिए, और 6-8 महीने आप इसको एक्सपीरियंस करिए। बीच में कभी एक छोटा सा रिडम्पशन भी सेल करके भी देखिए कि किस तरह आप सेल रिडम्पशन डालते हैं, 3 से 4 दिन में पैसा आपके बैंक अकाउंट में आता है। तो आप जब ये फुल सर्कल आप करके खुद से देखेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, विश्वास बढ़ेगा, और उसके बाद आप तैयार हो पाएंगे थोड़ा सीरियसली म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने के लिए।
आशुतोष, क्या शुरुआती निवेशक को 4 से 5 फंड में निवेश करना चाहिए?
देखिए, इट्स अ मैटर ऑफ स्केल ऑफ द इन्वेस्टमेंट। अगर आप,
क्योंकि 500-500 रुपए के SIP की अगर हम बात कर रहे हैं, तो क्या हम 5 फंड्स में जाएं?
अगर आपको देखिए एक टेस्ट करने के लिए, ट्राई करने के लिए आप करना चाहते हैं, वैसे स्केल के हिसाब से 5 फंड्स की जरूरत नहीं है, आप 2 फंड से भी शुरुआत कर सकते हैं। तो इट्स अ मैटर ऑफ स्केल। लंबे आपका ज्यादा इन्वेस्टमेंट है तो आप 4 से 5, और 4 से 5 के ऊपर भी जाना बहुत ज्यादा रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि आप ओवर डाइवर्सिफाई होते हैं। तो 4 से 5 फंड एक आइडियल रेंज आप मानिए, और स्केल के साथ आप ज्यादा कर सकते हैं, कम स्केल है तो 1 या 2 फंड से भी आप जा सकते हैं।
दैट्स इंडीड अ वेरी ग्रेट पीस ऑफ एडवाइस। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट कॉलर अमित फ्रॉम मुंबई। अमित जी, अपना सवाल पूछिए।
थैंक यू मैडम। मैडम, मुझे एक्सपर्ट से सवाल ये था कि मुझे आप निफ्टी 50 जो है इस फंड और मल्टी कैप फंड, इसमें दोनों में फर्क क्या है स्ट्रेटेजी में, और निफ्टी 50 का कोई मुझे अच्छा फंड का नाम आप बता सकते हैं प्लीज? थैंक यू
जी। निफ्टी 50 और मल्टी कैप में फर्क ये है, काफी फर्क है अगर आप वैसे देखें। सबसे बड़ा तो यही है कि निफ्टी 50 एक पैसिव स्ट्रेटजी है, उसमें फंड मैनेजर का रोल बहुत कम होता है। निफ्टी 50 जैसे आप जानते हैं कि एक जाना माना भारतीय स्टॉक मार्केट का इंडेक्स है, और जो निफ्टी 50 बेस्ड फंड्स होते हैं वो बेसिकली, उनमें फंड मैनेजर स्टॉक्स का चुनाव नहीं करता आपके लिए, वो सिर्फ आपके पैसे को निफ्टी 50 की इंडेक्स के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उन कंपनी में उसी प्रोपोर्शन में, उसी मात्रा में आपका पैसा इन्वेस्ट करते हैं निफ्टी 50 में, जिस मात्रा में वो इंडेक्स में है। और जैसे जैसे इंडेक्स में स्टॉक आते हैं जाते हैं, उसी तरह आपका पोर्टफोलियो फंड का चेंज होता जाता है। तो एक पैसिव स्ट्रेटजी है, लो कॉस्ट स्ट्रेटजी है, और आपका पैसा सारा ही इसमें लार्ज कैप कंपनीज में, इस देश की जो 50 सबसे बड़ी लिस्टेड कंपनीज हैं उनमें आपका पैसा निवेश किया जाएगा। वहीं मल्टी कैप फंड्स जो होते हैं वो एक एक्टिवली मैनेज स्ट्रेटजी है, उनमें कौन से स्टॉक्स पोर्टफोलियो में आएंगे या नहीं आएंगे या कितनी मात्रा में आएंगे, ये जो फंड मैनेजर्स की टीम है फंड कंपनी की, वो डिसाइड करते हैं। और एक्टिवली मैनेज होने का मतलब है कि कोई भी वो आपका जो भी उनका बेंचमार्क है पोर्टफोलियो, उससे काफी डिफरेंट भी हो सकता है। दूसरा एक बड़ा फर्क ये है कि इन पोर्टफोलियोज में बाय मैंडेट कम से कम 25-25% आपका पैसा मिड कैप और स्मॉल कैप्स में जरूर होगा, तो लार्ज कैप स्टॉक्स का प्रोपोर्शन 50% से ज्यादा इन फंड्स में नहीं होगा। तो ये थोड़ा सा ज्यादा एग्रेसिव, थोड़ा सा ज्यादा हाई रिस्क हाई रिटर्न स्ट्रेटजी है वर्सेज निफ्टी 50। जहां तक फंड्स की बात है, देखिए निफ्टी 50 में फंड्स, निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करने वाले फंड्स में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, सारे ही फंड्स में आपको सेम पोर्टफोलियो मिलेगा, सारे ही फंड्स के रिटर्न भी बहुत क्लोजली अलाइंड हैं, बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। तो आप कोई भी फंड चुनाव कर सकते हैं, आप दो चीजों को, फैक्टर्स को देखिएगा जब भी आप लिस्ट देखें, फंड का साइज अच्छा खासा बड़ा हो और उसका एक्सपेंस रेशियो कम हो, जहां पे भी आपको ये दो फैक्टर मिले आप कोई भी निफ्टी 50 का ऐसा फंड लेकर उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं।
जी, कोलकाता से अतनु साहा हमारे साथ है। अतनु, स्वागत है आपका, सवाल पूछें।
हाँ, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर, माय क्वेश्चन सच है ऑस्ट्रेलिया से, व्हाट अबाउट हिस्ट्री ऑफ म्यूचुअल फंड, व्हाट्स डिफरेंट वेज trust of financial organization. And please tell us something firstly, open-end and closed form, and it's different. How do you utilize it properly? Thank you.
Atanu, aap अगर सुन पा रहे हैं हमारी आवाज़ तो अपना सवाल दोहरा सकते हैं क्योंकि कुछ डिस्टर्बेंस की वजह से हम आपका सवाल नहीं समझ पाए. अतनु आप सुन पा रहे हैं? शायद चलिए हम अगले कॉलर के पास चलते हैं. सॉरी अतनु, हम आपका सवाल ठीक से नहीं सुन पाए. शायद हम अगले सप्ताह बताएंगे. अगले कॉलर हमारे कर्नाटका से है, कुमार नायक. स्वागत है आपका, सवाल पूछें.
सर गुड इवनिंग सर, दिस इज कुमार नायक फ्रॉम कर्नाटका.
जी
सो मुझे डिटेल में थोड़ा इन्फॉर्मेशन चाहिए रिगार्डिंग सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के बारे में, और स्मॉल कैप और मिड कैप और लार्ज कैप में किस कैप में हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो बेहतर होगा, इसके बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन चाहिए सर. थैंक यू.
जी देखिए, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान एक निवेश करने का तरीका है. म्यूचुअल फंड्स में निवेश करने का एक तरीका है जिसे SIP या सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान बोला जाता है. इक्विटी फंड्स में निवेश करने के लिए ये एक बेहतरीन तरीका माना जाता है. देखिए बहुत सिंपल भाषा में SIP होता है कि आपका मासिक तौर पर हर महीने आपके बैंक अकाउंट से कुछ पैसा डेबिट होकर कट कर आपके जो फंड का आपने चुनाव किया है उसमें हर महीने अपने आप वो पैसा इन्वेस्ट होता जाता है. आप एक बार मानिए आप एक SIP बनाते हैं, आप एक मैंडेट देते हैं कि हर महीने मेरे अकाउंट में से 1,000 रुपये डेबिट कर उसको ABC फंड में आप इन्वेस्ट कर दीजिए हर महीने की 10 तारीख को, और ऐसा आप अगले 12 महीने तक करिए. तो आपने 1,000 रुपये का SIP बनाया है एक फंड में एक साल का, और ये जिस तरह EMI होती है कि आपके बैंक अकाउंट से पैसा ऑटोमेटिकली महीने के शुरू में आपके चोजन डेट पर कटकर वो आपकी लोन की किश्त चुकाने में चला जाता है, इसी तरह से SIP में वो पैसा आपके बैंक अकाउंट से ऑटोमेटिकली कटकर निवेश हो जाता है. तो आप SIP को रिवर्स EMI समझिए. EMI में एक एक तरह का खर्चा है, आप लोन का भुगतान करते हैं, यहाँ पे आप निवेश कर रहे हैं. बाकी जो बैकग्राउंड में मोडालिटीज़ हैं वो यही हैं कि आप एक मैंडेट सेट करते हैं, आप अपने बैंक को एक तरह से आदेश देते हैं कि इस कंपनी को मेरे अकाउंट से हर महीने इतना पैसा निकालने की मैं इजाज़त देता हूं, और वो आपका पैसा ऑटोमेटिकली इन्वेस्ट हो जाता है. तो अपने निवेश को ऑटोमेट करने के तरीके को SIP बोलते हैं, और ये बेहतरीन तरीका इसलिए माना जाता है क्योंकि मार्केट्स वॉलेटाइल होती हैं. मार्केट्स में देखा जाता है कि काफ़ी भारी उतार चढ़ाव एक एक दिन में भी आ जाता है. तो अगर आप अपना सारा पूंजी किसी एक दिन मार्केट में निवेश करते हैं और उसके बाद मार्केट अगले 2-4 दिन तक भारी गिरावट के दौर से गुजरती है तो ये काफ़ी पेनफुल, काफ़ी घबराहट भरा हो सकता है नए इन्वेस्टर्स के लिए. SIP आपको इससे बचाता है क्योंकि हर महीने आपका पैसा कभी मार्केट ऊपर लेवल पे कभी नीचे लेवल पे निवेश होता है, तो आपके जो ओवरऑल कॉस्ट होता है उसमें एवरेजिंग हो जाती है, और उसकी वजह से मार्केट के उतार चढ़ाव से निवेशक को घबराहट होने के चांसेस कम होते हैं. तो ये मोटा मोटा SIP का तरीका है. दूसरा आपने पूछा लार्ज मिड स्मॉल किस में इन्वेस्ट करें. देखिए मेरी राय में आप फ्लेक्सी कैप फंड की तरफ जाएं, फ्लेक्सी कैप या मल्टी कैप फंड्स की तरफ. उसमें आपको नहीं डिसाइड करना होता कि लार्ज कैप में कितना करें, मल्टी कैप में, स्मॉल कैप में. ये डिसीजन आप फंड मैनेजर के ऊपर छोड़ देते हैं, और वही म्यूचुअल फंड्स का एक तरह से देखा जाए तो पर्पस है कि निवेशक जो खुद मार्केट में इन्वेस्ट करने की जानकारी नहीं रखते वो आप म्यूचुअल फंड के जरिए एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर आपके बिहाफ पर इन्वेस्ट करता है. तो आप फ्लेक्सी कैप या मल्टी कैप फंड चुनाव करें और बाकी डिसीजन फंड मैनेजर पर छोड़ दीजिए.
आशुतोष, लेट्स कनेक्ट विद आवर नेक्स्ट कॉलर मुकुंद फ्रॉम महाराष्ट्र. मुकुंद जी अपना सवाल पूछिए.
मेरा ये सवाल है सर जी, जो होम लोन रहता है उसमें दो प्रकार की इंटरेस्ट चार्ज किए जाते हैं, फ्लोटिंग और फिक्स. तो मेरे समझ में ऐसा सुनने को आ रहा है फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट को बैंक अपने को 0.1 से 0.2 इंटरेस्ट जस्ट चार्ज रखती है, ये सही है क्या?
एक्चुअली अभी आज हमारा कार्यक्रम म्यूचुअल फंड्स पे है, और आप इसके लिए शनिवार को और सोमवार को जब हमारे दूसरे एक्सपर्ट्स आते हैं तब आप फ़ोन करें तो इसके बारे में आपको बेहतर जानकारी मिल पाएगी. फरीदाबाद से अगले कॉलर हैं प्रेम. स्वागत है आपका, सवाल पूछें।
हाँ जी नमस्कार जी, जैसे कि अभी आपने बताया कि म्यूचुअल फंड खरीदने जाए बैंक में तो आपको यूलिफ पकड़ाना दे, तो ये म्यूचुअल फंड का तो हमें समझ में आ गया, यूलिफ क्या चीज है? क्योंकि हमारे साथ एक हादसा ये हुआ है, हादसा तो नहीं, हमें हम उससे बच गए, ये प्राइवेट बैंक वालों ने हमें बताया कि आपको 2 लाख रुपया जमा करना पड़ेगा हर साल, 12 साल तक आपको 2-2 लाख देने हैं और हर साल हम आपको 83,000 देते रहेंगे, 12 साल के बाद आपको 2 लाख देना बंद करना पड़ेगा और 83,000 रुपया आपको हर महीने आपके अकाउंट में 25 साल तक आता रहेगा और प्लस जो अमाउंट आपका जमा हो जाएगा वो क्या होता है?
देखिए यूलिप होता है एक तरह से इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस का मिश्रण। एक किसी भी पर्सनल फाइनेंस में अगर आप अपने निजी फाइनेंसिस को मैनेज करते हैं तो आपका इंश्योरेंस आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है और निवेश इन्वेस्टमेंट जिससे आप अपनी सेविंग्स को बढ़ाते हैं वो आपके बुढ़ापे में काम आता है। तो सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस, इन दोनों का काफ़ी अहम भूमिका होता है किसी भी पर्सनल फाइनेंस डिस्कशन में। यूलिप एक ऐसा प्रोडक्ट है जो इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को कंबाइन कर देता है। तो सुनने में ये कॉन्सेप्ट बहुत नोवल लगता है कि आपको दोनों चीज़ें जो आपको ज़रूरी हैं वो आपको एक ही प्रोडक्ट में मिलती हैं, तो ये तो बेहतर होना चाहिए, लेकिन असल में जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है वो थोड़ा डिफरेंट होता है क्योंकि आपको दोनों में ही सब ऑप्टिमल एक कॉम्बिनेशन मिलता है, ना आपको उतनी इंश्योरेंस मिल पाती जितनी आपको एक्चुअली में ज़रूरत है, और क्योंकि यूलिप्स में काफ़ी बार ये देखा गया है कि खर्चे काफ़ी ज़्यादा होते हैं जो इन्वेस्टर को भुगतने पड़ते हैं, तो उस वजह से आपका काफ़ी पैसा खर्चों में चला जाता है तो निवेश भी आपका उस रफ्तार से बढ़ नहीं पाता है। तो इसीलिए यूलिप्स को अवॉइड करना चाहिए, इंश्योरेंस को आप अलग रखिए, टर्म इंश्योरेंस जो कि एक प्योर इंश्योरेंस कवर है, इंश्योरेंस की अपनी नीड्स को टर्म इंश्योरेंस से पूरा करिए, और निवेश के लिए आपके पास जित तमाम स्मॉल सेविंग स्कीम, एफडीज, म्यूचुअल फंड्स, जितने भी आपके पास विकल्प हैं उन सब से आप अपना पोर्टफोलियो बनाइए अपनी ज़रूरत के हिसाब से, और निवेश को और इंश्योरेंस को अलग अलग रखिए। जिस प्रोडक्ट आप और आप कैसे पहचान पाएंगे कि आपको यूलिप बेची जा रही है, एक सबसे बड़ा क्यू आपके लिए यह है कि जिस प्रोडक्ट में इंश्योरेंस और निवेश साथ साथ हो तो आप समझिए कि वो यूलिप होगा ज़रूर। और जहाँ पे लॉन्ग टर्म कमिटमेंट की बात करी जाए कि कम से कम आपको 12 साल तक पैसे देने हैं, म्यूचुअल फंड्स में देखिए ऐसी कोई लॉन्ग टर्म कमिटमेंट नहीं होती, आप 6 साल का 6 महीने का भी SIP बना सकते हैं और उसको कभी भी बंद भी कर सकते हैं, अपने SIP को कंटिन्यू कर सकते हैं, बीच में रोक सकते हैं, कुछ महीनों के लिए पॉज कर सकते हैं, ये सारी फ्लेक्सिबिलिटी आपके पास होती है, लेकिन कभी भी लॉन्ग टर्म कमिटमेंट आपसे ऐसे नहीं मांगी जाती। तो जहाँ पे बहुत लंबे समय की कमिटमेंट आपसे मांगी जाए और जिस प्रोडक्ट में इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट मिक्स्ड हो तो आप समझिए कि जरूर वो यूलिप की बात हो रही है।
अगला सवाल अनिल से, अनिल वडोदरा से, आप अपना सवाल पूछे।
हाँ मार्केट मंत्री टीम नमस्कार।
नमस्कार,
मेरा सवाल ये है कि मेरा 2008 से SIP चल रहा है, अभी तकरीबन 6-7 फंड है और मैं रिडेम्पशन करने जा रहा हूँ, अभी तकरीबन 40 लाख तक अमाउंट होगा, इसमें मेरा अमाउंट लगा हुआ होगा 10-15 लाख। तो मेरा सवाल ये है कि जो इस पे टैक्स लगेगा, तो सवाल मेरा यही है कि ये 10-20-25 लाख पर टैक्स बहुत ज़्यादा लगेगा, जब मुझे मिला है 15-20% और 12.5% टैक्स लगेगा, ये बहुत सोचने की बात है। लेकिन
जी तो शायद आपकी आवाज़ बीच में कट गई, शायद लाइन कट गई, लेकिन जहाँ तक मैं आपका सवाल समझ पाया, आप टैक्स के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो देखिए इस निवेश पर आपने बताया 2008 से आपने शुरू किया था, 2018 तक आपका गेन ग्रैंडफादर्ड है क्योंकि 2018 तक इक्विटी में इंडिया में कैपिटल गेन टैक्स, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स नहीं होते थे, उसके बाद से कैपिटल गेन टैक्स, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स पे रीइंट्रोड्यूस किए गए थे करीब 2004 या 5 में, जहां तक मेरी जानकारी अगर गलत नहीं है तो ये टैक्स बंद किया गया था और 2018 में दोबारा रीइंट्रोड्यूस किया गया था। तो सरकार ने जब ये किया था तब उन्होंने बोला था कि 2018 तक के जो आपके कैपिटल गेन है वो टैक्स एग्जेम्प्ट रहेंगे, उसको टर्म दी गई थी ग्रैंडफादरिंग। तो आपके 2018 तक जितने आपके पोर्टफोलियो में गेन्स हो गए थे वो ग्रैंडफादर्ड हैं, 2018 से जो 2025 अभी तक के आपके जो गेन्स बचेंगे उन पर आपको टैक्स देना होगा। और देखिए इसमें कोई बुराई नहीं है, टैक्स एक हकीकत है, टैक्स हर जिम्मेदार नागरिक को ज़रूर भरना चाहिए, तो आप इससे टैक्स से घबराएं नहीं। हाँ आपके लिए एक एज एन इन्वेस्टर आपके लिए इम्प्लीकेशन यही है कि आप बेचे सोच समझ कर, अगर आप नीडलेसली अपने पोर्टफोलियो को चर्न करते हैं अकाउंट्स में बहुत ज्यादा खरीद बेच करते हैं तो अननेसेसरीली आप अपने आप को टैक्स बर्डन से सैडल करते हैं, जो कि अवॉइडेबल है। लेकिन अगर आपको पैसे की जरूरत है तो आप बेझिझक आगे होके जाइए। और जो यूटिलिटीज हैं, कैम्स की वेबसाइट है, वहां पे अगर आप अपना आप कैपिटल गेन टैक्स रिपोर्ट वहां से डाउनलोड करके देख भी पाएंगे कि आपका कितना कैपिटल गेन बनेगा, कितना आपका ग्रैंडफादर्ड है और कितने अमाउंट पर आपको कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा, तो इसका भी आपको अच्छा खासा अंदाज वहां से लग जाएगा।
और वैसे भी एक कंफ्यूजन रहता है लोगों को कि हमने इतने सालों में टोटल गेन हमारा 16% है और 12% तो हमें टैक्स देना है या 10% टैक्स देना है, तो उस आंकड़े को भी समझना चाहिए कि आपको वो सिर्फ गेन पर गेन के उतना परसेंट देना है।
जी, ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया सुबोध जी। ये भी एक आप जानिए कि अगर आपके 100 रुपए 200 रुपए 150 रुपए हो गए हैं तो आपको जो टैक्स देना है वो पूरे 150 की राशि पर नहीं देना है, आपको 50 जो आपका गेन है उसके 12.5% देना है। तो ये भी एक बात बहुत जरूरी है। जो ये श्रोता थे इनके अगर कॉन्टेक्स्ट में बात करूं तो इनको पूरे 40 लाख पर टैक्स नहीं देना, इन्होंने इनके 10-15 लाख इनकी पूंजी लगी है, 40 लाख इनका पोर्टफोलियो हो गया है, तो जो 25 लाख का अमाउंट है उसमें से भी 2018 तक के गेन इनके टैक्स फ्री रहेंगे, उसके बाद के जो गेन है बहुत ही अंदाजे से, और ये अंदाजा गलत भी हो सकता है, लेकिन शायद 12-15-16 लाख पर शायद इनको टैक्स देना पड़े,
पड़ सकता है,
तो उसके ऊपर शायद इनका टैक्स बने।
जी, बिहार से कॉलर है टिंकू, स्वागत है आपका, सवाल पूछें।
नमस्ते सर।
नमस्ते
सर, मैं SIP म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहते हैं सर, किस तरह किया जाए? और दो सवाल है मेरा, जैसे म्यूचुअल फंड SIP द्वारा करते हैं उसमें टैक्स भी लग जाएगा क्या?
जी, म्यूचुअल फंड्स में टैक्स बेचने पर लगता है, जब तक आप म्यूचुअल फंड खरीद कर बैठे रहेंगे तब तक आपको कोई टैक्स नहीं देना, हर साल आपको टैक्स नहीं देना होता म्यूचुअल फंड पे, सिर्फ बेचने के वक्त देना होता है। और जहां तक आप शुरुआत कैसे करें, ये क्वेश्चन हमने काफी डील किया है आज के एपिसोड में भी, आप किसी एजेंट के थ्रू, अगर आपको जानकारी नहीं है आप किसी एजेंट के थ्रू छोटे अमाउंट से, छोटी राशि से शुरुआत करें और उसके बाद कोशिश करें कि आप धीरे धीरे ऑनलाइन मूव हो जाएं, और अगर आप ऑनलाइन अभी ही करने में सक्षम है तो आप ऑनलाइन भी शुरुआत कर सकते हैं।
मुंबई से संजय जी जुड़ चुके हैं, अपना सवाल पूछिए।
जी सर, नमस्कार।
नमस्कार
सर, मुझे म्यूचुअल फंड में सर 4 साल से इन्वेस्ट कर रहा है, फर्स्ट टाइम सर मुझे रिडीम करना है, तो सर इसमें कितना टैक्स या कुछ कटेगा उस बारे में बताइए प्लीज।
जी, आप 4 साल से इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप टैक्स देखिए लगता है म्यूचुअल फंड्स में, मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आपकी इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स होंगी और इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स पर आपको जो 1 साल से ज़्यादा आपने यूनिट्स होल्ड करी हैं उस पर आपको 12.5% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा, और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो 1 साल से अंदर आपने जो खरीदे थे और अगर 1 साल के अंदर बेचते हैं तो उस पर आपको 20% गेन्स पर आपको टैक्स देना होगा।
ये खबरों पर नजर डालते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत की ओर यात्रा में महिलाओं की भूमिका का विशेष उल्लेख करते हुए पिछले 11 वर्षों में महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास पर सरकार के फोकस को रेखांकित किया। केंद्र में एनडीए सरकार के 11 साल पूरे होने पर श्री मोदी ने कहा कि विज्ञान, शिक्षा, खेल, स्टार्टअप और सशस्त्र बलों सहित सभी क्षेत्रों में महिलाएं उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रही हैं और कई लोगों को प्रेरित कर रही हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि एनडीए सरकार ने कई प्रभावशाली पहलों के माध्यम से महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को नई परिभाषा दी है। इनमें स्वच्छ भारत अभियान के माध्यम से सम्मान सुनिश्चित करना, जनधन खातों के जरिए वित्तीय समावेशन और जमीनी स्तर पर सशक्तिकरण शामिल है। अगली खबर है, लगातार 2 महीने तक सकारात्मक रुख बनाए रखने के बाद विदेशी निवेशकों ने जून के पहले हफ्ते में भारत के शेयर बाजार से लगभग 9,000 करोड़ रुपए निकाल लिए। ताजा आंकड़ों के अनुसार उन्होंने भारतीय शेयर बाजार से 8,749 करोड़ रुपए निकाले, जिसके पीछे सबसे बड़ा कारण अमेरिका और चीन के बीच फिर से बढ़ते कारोबारी तनाव और अमेरिकी बॉन्ड यील्ड में बढ़त को बताया जा रहा है। शेयर बाजार के अलावा विदेशी निवेशकों ने पिछले एक हफ्ते में भारत के ऋण बाजार से भी 6,709 करोड़ रुपए निकाल लिए। इससे पहले विदेशी निवेशकों ने मई में भारतीय बाजार में लगभग 20,000 करोड़ रुपए और अप्रैल में 4,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश किया था। आशुतोष मार्केट मंत्र में आने और श्रोताओं के सवालों के बहुत अच्छे जवाब देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
जी धन्यवाद आपका।
एंड गेस्ट लिसनर्स, बिफोर वी रैप अप टुडेज शो, अ रिमाइंडर ऑफ द हेडलाइंस। डोमेस्टिक मार्केट्स टू फोकस ऑन मैक्रो डेटा, ग्लोबल टैरिफ्स डेवलपमेंट एंड फॉरेन फंड इनफ्लोज फॉर क्यूज नेक्स्ट वीक। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हाईलाइट्स ट्रांसफॉर्मेटिव रोल प्लेड बाय वुमेन इन द जर्नी टुवर्ड्स अ डेवलप्ड इंडिया। एंड फॉरेन इन्वेस्टर्स पुल आउट नियरली 9,000 crore rupees फ्रॉम द Indian equity markets in the first week of June. And that's it in today's edition of Market Mantra. Until then, goodbye. Market Mantra.